स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यहूदा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, 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 यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पुस्तक और उसमें यहूदा की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्री में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार यहूदा हमें विधर्मियों से सचेत रहने की और चेतावनी देने की बातें कह रहा है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम इसके अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें फिर से एक बार ऐसा अवसर दिया है कि हम आपके जीवित वचन से अध्ययन कर सकें, मनन चिंतन कर सकें। आज जब हम फिर से यहूदा की पत्री से अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में सत्यता को लाने पाए, प्रकट करने पाए, ताकि प्रभु प्रत्येक श्रोता भाई बहन अपने जीवन में सच्चाई को पहचान कर आपको ग्रहण कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं। आप उनकी भी सहायता करें, उनकी सुधि लें, उन्हें छुए और चंगाई दे ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम यहूदा की पत्री में देख रहे हैं कि किस प्रकार यहूदा हमें कलीसिया को विधर्म से बचाने की बातें कह रहा है। हम देख रहे हैं कि आरंभिक कलीसिया में विधर्म के प्रवेश के कारण यहूदा उन्हें चेतावनी देता है कि वे अपने सच्चे विश्वास के यत्न में लगे रहें, क्योंकि कुछ विधर्मी चुपके से उनमें आ गए हैं जो उन्हें विश्वास से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कलीसिया को उनसे सावधान रहना है क्योंकि परमेश्वर विश्वास न करने वालों को दंड देता है। अविश्वास के कारण उसने इसराइल की एक पीढ़ी को जंगल ही में मरने के लिए रख दिया था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी विद्रोह का दंड दिया। इसी प्रकार उनके मध्य में जो झूठे शिक्षक हैं उन्हें भी परमेश्वर दंड देगा। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यहूदा हमें विधर्मियों के चार संकेत बता रहा था, जिसमें से हमने दो संकेत देखे थे। पहला स्वप्नदर्शी थे और कल्पना के संसार में रहते थे। दूसरा, वे अपने शरीर को अशुद्ध करते थे, वे घृणित और अप्राकृतिक कार्य करते थे, जैसे सदोम और अमोरा के लोग अनैतिकता में मगन थे। आइए आज हम तीसरा संकेत को देखें, वे प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे मृत्यु दंड से बचना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि सब जन अपने मन की इच्छा का आचरण रखें। मेरे प्रियो, हम इसका परिणाम देख रहे हैं। शारीरिक दुराचार में तो आज का समाज कैंसर की नाई फूट गया है। हम सोचते हैं कि हम सभ्य हैं, परंतु हम वास्तव में बर्बर हैं, क्योंकि हम प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। आज तलाक की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या मनुष्य चाहता है कि कोई दंपत्ति साथ न रहे? क्या मनुष्य चाहता है कि दंपतियों को साथ रहने से रोका जाए? मेरे मित्रों, परिवार समाज का नींव का पत्थर है और इसी से परिवार बनता है, समाज बनता है, परंतु आज तलाक हो रहा है। चौथी बात हम देखते हैं, वे ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, वे नियमों और पदाधिकारियों का विरोध करते हैं। हमारे देश में या नगरों में जो अपराध हो उसके दोषी अगुए ठहराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पदाधिकारियों के सम्मान का स्वभाव नष्ट हो गया है। निसंदेह कुर्सी पर बैठने वाले कभी कभी सम्मान के योग्य व्यवहार नहीं करते हैं, परंतु कुर्सी का तो सम्मान आवश्यक है। अगले पद में यहूदा इसका उदाहरण देगा। मेरे मित्रों, इन विधर्मियों की युक्ति पर ध्यान दें। वे चुपके से प्रवेश करते हैं, वे अधर्मी जन हैं, वे परमेश्वर के अनुग्रह को राग रंग में बदल देते हैं, वे प्रभु यीशु का इनकार करते हैं, वे स्वप्नदर्शी हैं, वे देह को अशुद्ध करते हैं, वे अधिकारों को तुच्छ जानते हैं, वे पदाधिकारियों का सम्मान नहीं करते हैं। ये उनके लक्षण हैं और वे घातक हैं, क्योंकि उनका कलीसियाई प्रवेश ऐसा है। यूनानियों ने 10 वर्ष तक ट्रॉय नगर को घेर करके रखा था, परंतु उनके गढ़ में सुराख नहीं कर पाए थे। वह नगर अभेद था। तब उन्हें एक युक्ति सूझी कि एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर उसमें सैनिक छिपा दें और उस लकड़ी के घोड़े को नगर द्वार के बाहर छोड़कर लौट जाने का नाटक करें। उन्होंने ऐसा ही किया। ट्रॉय के नागरिकों ने जब उन्हें लौटते देखा तो सोचा कि युद्ध नहीं होगा। उन्होंने उस लकड़ी के घोड़े को देखा तो उस अति सुंदर घोड़े को नगर में ले गए। रात के समय घोड़े में छिपे सैनिकों ने नगर द्वार खोल दिया और यूनानी नौसेना रात ही रात लौट आई। यूनान की प्रतापी सेना 10 साल तक बाहर से जो काम न कर पाई थी वह काम कुछ ही सैनिकों ने भीतर से कर दिया। इसी प्रकार कलीसिया आज भीतर से महान हानि उठा रही है। बाहरी सताव ने तो कलीसिया की वृद्धि ही रोक दी है, परंतु मुक्त विचारों के कारण कलीसिया की आंतरिक हानि हो रही है। प्रभु यीशु के साथ भी भीतर ही से विश्वासघात किया गया था, न कि बाहर से। आपको मालूम है कि उसके 12 शिष्यों में से एक ने उसे देश की महासभा को उसे पकड़वाया और उसी के देश की महासभा ने उसे रोमियों के हाथों में सौंप दिया, जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया। मेरे मित्रों, कलीसिया भी चुपके से विधर्मियों के प्रवेश के कारण भीतर से हानि उठा रही है और यही कारण है कि यहूदा हमें सचेत कर रहा है। विधर्म जो कभी मनुष्य के हाथ के बराबर का बादल था, आज विनाशकारी आंधी बन गया है। हमें इस पत्री को आंधी की चेतावनी बनाकर सामने रखना है। जी हाँ, क्योंकि हमारे मध्य विधर्म का बोलबाला है। यह मेरे आनंद या दुख का वर्णन नहीं है, परंतु एक तथ्य है। लगभग सभी प्राचीन बड़ी बड़ी कलीसियाएं विश्वास से हट गई हैं, टल गई हैं। मैंने आज तक न तो किसी पथभ्रष्ट कलीसिया न ही किसी संस्था को लौटते देखा है। वे वापस नहीं लौटे। जॉन वेस्ली ने शिथिल एवं उदासीन कलीसिया को पुनर्जीवित किया था, परंतु आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी कलीसियाएं बाहर से जॉन वेस्ली हैं, उनके भीतर पहले जैसा जीवन और जोश नहीं रहा। न केवल जॉन वेस्ली की कलीसिया, परंतु अन्य कलीसियाओं की भी यही स्थिति है। पहला सा प्रेम उनमें नहीं रहा। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि मेरे विचार में आज का रूढ़िवाद इसका समाधान है। मैं वहां भी ऐसी दुर्बलता देखता हूं जो उनकी नींव ढा देगी। वे शिक्षाओं में तो उचित एवं लकीर के फकीर हैं, परंतु सदाचार और नैतिकता से खाली हैं। उनके आचार विचार और अभ्यास अब ऊंचे नहीं हैं। उनमें नैतिकता का पतन हो रहा है, जो दुर्भाग्य से रूढ़िवादी कलीसियाओं में देखा जा सकता है। मैं ऐसे ही एक समूह में था। वे शिक्षाओं और पृथकीकरण के विषय में कट्टर थे, परंतु जब उनमें से किसी एक को अनैतिकता के व्यवहार में दोषी पाया गया तो वे उसका पक्ष ले रहे थे। ऐसा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को हानि पहुंचाता है, क्योंकि यह भीतरी है। मेरे प्रियो, आज हम विधर्म के युग में वास करते हैं, रह रहे हैं। आप कहेंगे, पास्टर आप क्या कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे? नहीं मेरे मित्रों, मैं तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आज की दशा तो इससे भी कहीं अधिक चौंकाने वाली है। 700 प्रचारकों का साक्षात्कार लिया गया और उनका विवरण इस प्रकार था, 48% ने बाइबल की प्रेरणा का इनकार किया, 24% प्रचारकों ने प्रभु यीशु की प्रायश्चित मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, 12% ने पुनरुत्थान का इनकार किया, 27% के अनुसार प्रभु यीशु जीवित और मृतकों का न्याय करने नहीं आएगा। एक प्रचारक ने कहा, प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ या नहीं, इस विषय पर हम विचार व्यक्त करना भी नहीं चाहते। दूसरे प्रचारक ने कहा, हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान जैसे छोटे से विषय पर विचार करना ही बंद कर दिया है। यदि रूढ़िवादी इस निर्बुद्धि बात पर विश्वास करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पास 20वीं शताब्दी पुराने खाली कब्र के अतिरिक्त प्रचार के अनेक अन्य विषय हैं। जी हां, एक जनमान्य प्रचारक ने कहा, हमारी कलीसिया में जिंदा ईमान बुजुर्गों का लगभग विलोप होने पर है। वृद्ध प्रचारक अब भी बाइबल पर विश्वास रखते हैं, परंतु हमारी युवा पीढ़ी अर्थात हमारी कलीसिया के वास्तविक अगुओं में से मैं एक को भी नहीं जानता कि वह प्रभु यीशु या रूढ़िवादी के एक भी विषय में विश्वास रखता हो। अब बताइए मेरे मित्रों, मैं क्या आवश्यकता से अधिक कह रहा हूं? क्या मैंने विधर्म को अधिक स्थान दे दिया है? यह सोचने की बात है। यहूदा 1:9 में लिखा हुआ है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। मेरे मित्रों, यह धर्मशास्त्र का एक अति असामान्य पद है। शैतान एक पतित स्वर्गदूत है और परमेश्वर का कट्टर बैरी है। मूसा के पार्थिव शरीर पर विवाद करते समय मीकाएल स्वर्गदूत ने शैतान पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाया जिससे उसकी मानहानि हो। आरंभिक कलीसिया के एक संत पिता क्लेमेंट ने मूसा के दफन के संबंध में इसराइल की पवित्र पुस्तकों में से एक का संदर्भ दिया था। मीकाएल को परमेश्वर ने मूसा का दफन करने के लिए भेजा था, परंतु शैतान ने उसे रोकते हुए कहा कि भौतिक वस्तुओं का स्वामी वही है, इसलिए मूसा की मृतक देह उसका अधिकार है। इस पर मीकाएल स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर तुझे झिड़के। शैतान ने मूसा पर हत्या का आरोप लगाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि शैतान ने रूपांतरण पर मूसा के आने में बाधा उत्पन्न की थी। लूसीफर जो शैतान है, परमेश्वर द्वारा सृजित सर्वोच्च प्राणी था, परंतु उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध रखा। उसमें घमंड समा गया था और वह परमेश्वर से अलग स्वतंत्र रहना चाहता था। उसका विचार था कि वह परमेश्वर को जगत के कुछ भाग से वंचित कर दे। परमेश्वर ने उसे विद्रोह करने दिया क्योंकि परमेश्वर के पास एक सर्वोच्च एवं पवित्र उद्देश्य था। शैतान तो आज भी यही सोचता है कि वह परमेश्वर की सृष्टि के एक भाग पर राज कर रहा है। वह तो चाहता है कि यह पृथ्वी पूरी तरह उसके अधीन हो जाए। यहां पर लिखा हुआ है प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। मेरे मित्रों, मिकाएल स्वर्गदूत ने शैतान को कुछ नहीं कहा। यदि हम होते तो अवश्य ही उसे खरी खोटी सुनाते। आप जानते हैं क्यों? मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत है। उसने बस इतना ही कहा प्रभु तुझे डांटे, क्योंकि मिकाएल स्वर्गदूत शैतान का तो नहीं उसके पद का सम्मान करता था। लूसीफर को सबसे बड़ा बनाया गया था। मेरे मित्रों, हमें इससे शिक्षा ग्रहण करना है। विश्वासियों में से अधिकांश ने तो परमेश्वर के समक्ष सम्मान से झुकना भी नहीं सीखा है। हम सृजित प्राणी हैं, इस बात को याद रखें, और परमेश्वर हमारा सृजनहार है। हमें उससे प्रश्न पूछने का क्या अधिकार है कि वह क्या करता है और क्यों करता है। मैं भी उससे पूछता हूं कि वह मेरे जीवन में कुछ घटनाएं क्यों होने देता है। परंतु हमें यह समझना है कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, हमारा सृष्टि करता है, वह हमारा उद्धार करता भी है। वही तो है जो हमसे प्रेम करता है। परंतु वह परम प्रधान है, पवित्र और अति महान है। जी हाँ, वह न्यायी एवं धर्मी परमेश्वर है। वह कभी गलती नहीं करता है। उसका हर एक काम उचित है और इसलिए हमें उस पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम उसके अधिकार का सम्मान करते हैं? क्या हम उसके अस्तित्व का सम्मान करते हैं? जिस दिन मनुष्य लेखा देगा, उस दिन प्रभु यीशु पूछेगा, तुम मुझे प्रभु प्रभु तो कहते थे, परंतु तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तुमने वही किया जो उचित समझा। मनुष्य का यही परिदृश्य है। आपके बारे में क्या है? मेरे बारे में क्या है? प्रधान स्वर्गदूत हमारे लिए कैसा आदर्श है? मेरे श्रोता मित्रों, आज मैं और आप किस प्रकार के परिदृश्य में हैं? परमेश्वर का वचन यहूदा की पत्री के द्वारा स्पष्ट कहता है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल भी शैतान को भला बुरा नहीं कहा, क्योंकि वह उसका सम्मान करता है। मेरे प्रियो, आज हम भी अपने उस पद का सम्मान करें। हम जाने कि परमेश्वर जिसने आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे सबको बनाया है, हम सबको बनाया है, परंतु आज हम किसको सम्मान दे रहे हैं? क्या हम उस रचने वाले को सम्मान दे रहे हैं या हम सृष्टि के सामने झुक रहे हैं? परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके सम्मुख झुकें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें और उस महान परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ताकि हम अपने जीवन में अनंत शांति, अनंत ज्योति, अनंत आनंद को प्राप्त कर सकें। मेरे श्रोता मित्रों, आज आपके पास में भी समय है कि आप प्रभु की ओर लौट आएं। ऐसा ना हो कि लोग आपको विधर्मी कहें, परंतु कहने पाए कि आप प्रभु की संतान हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आज के वचन के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दें।